एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत के जीवन में झांकने वाले हैं। सूजन क्विन की लिखी जीवनी है मैरी क्यूरी एक जीवन, और ये किताब सिर्फ आप जानते हैं उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है।
जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये एक इंसान की कहानी है, उनके संघर्ष, उनके अंदर की बातें, उनका जुनून, सब कुछ।
तो हम बात कर रहे हैं मैरी क्यूरी की, जिनका असली नाम जहां तक मुझे याद है मारिया स्कुलोडोस्का था।
हाँ बिल्कुल, पोलैंड में जन्मी थी, बाद में फ्रांस आ गई, एक भौतिक विज्ञानी और रसायनज्ञ, और रेडियोधर्मिता पर उनका काम तो मतलब विज्ञान के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था।
और ये कहानी आज भी इतनी जरूरी क्यों है, मतलब क्यों सुने हम आज उनके बारे में?
देखिए, एक तो वो अकेली इंसान है जिन्हें दो अलग अलग साइंस में नोबेल प्राइज मिला, ये अपने आप में ही असाधारण है।
हाँ ये तो है,
पर उससे भी ज्यादा मुझे लगता है उनकी कहानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक महिला थी, एक अप्रवासी थी, और उस जमाने में, मतलब 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के शुरुआत में, विज्ञान की दुनिया में टिके रहना
वो भी एक महिला के लिए
जबरदस्त मुश्किलें रही होंगी।
बहुत ज्यादा।
तो क्विन की किताब हमें वो सिर्फ एक आदर्श मूर्ति वाली छवि से परे ले जाती है, उनके असली संघर्ष दिखाती है।
सही कहा, कई बार हम सिर्फ उपलब्धियों को देखते हैं, उसके पीछे के इंसान को नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं उनके सफर को, पोलैंड से, उनके शुरुआती सालों से।
जी, उनका जन्म हुआ 1867 में वॉर्सो में, और उस समय पोलैंड पर रूस का कब्जा था।
तो माहौल ही काफी तनावपूर्ण रहा होगा बचपन से।
हाँ बिल्कुल, परिवार में शिक्षा की बहुत अहमियत थी, माता पिता दोनों टीचर थे। उनके पिता व्लादिस्लाव, वो गणित और भौतिकी पढ़ाते थे। उनके खुद की भी कुछ वैज्ञानिक महत्वाकांक्षाएं थी जो शायद पूरी नहीं हो पाई।
तो उसका असर भी पड़ा होगा मैरी पर।
बिल्कुल पड़ा होगा, और उस रूसी दमन के माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाना, अपनी पोलिश पहचान को जिंदा रखना, ये उनके परिवार के लिए एक तरह का आप कह सकते हैं प्रतिरोध था। शिक्षा ही हथियार थी।
लेकिन बचपन आसान नहीं था, उनकी माँ की मृत्यु हो गई, फिर एक बहन की भी।
हाँ, ये त्रासदियाँ कम उम्र में ही आ गईं, और क्विन लिखती हैं कि शायद इसी वजह से उनमें एक तरह का संयम, एक गंभीरता आ गई। वो अपने लक्ष्य पर बहुत केंद्रित हो गई।
और ज्ञान की प्यास तो जबरदस्त थी, वो गुप्त फ्लोटिंग यूनिवर्सिटी में भी गई हैं, है ना?
जी हाँ, जो उस समय रूसी अधिकारियों के खिलाफ छुपकर चलाई जाती थी, ये दिखाता है कि उनमें शुरू से ही वो जज्बा था ज्ञान पाने का और नियमों को चुनौती देने का।
फिर उन्होंने गवर्नेंस का काम भी किया पैसे बचाने के लिए।
हाँ, अपनी बहन ब्रोनिया के लिए, ताकि वो पेरिस जाकर मेडिकल की पढ़ाई कर सकें। ये त्याग और परिवार के प्रति समर्पण दिखाता है।
और इसी बहन की मदद से फिर वो खुद पेरिस पहुंची 1891 में।
जी, और वहां सॉर्बोन यूनिवर्सिटी में मारिया स्कुलोडोस्का बन गई मैरी क्यूरी। लेकिन पेरिस में छात्र जीवन, अरे वो तो बहुत ही कठिन था।
हाँ मैंने पढ़ा है, भयानक गरीबी,
बहुत ज्यादा। छठे माले पर एक छोटी सी अटारी, ठंडी, खाने को बस रोटी और चाय, कभी कभी तो भूख से बेहोश भी हो जाती थी। क्वीन इसे कहती है वैज्ञानिक तपस्या।
वैज्ञानिक तपस्या, क्या बात है, मतलब भौतिक सुख कुछ नहीं, बस ज्ञान की खोज में आनंद।
बिल्कुल, और इस तपस्या का फल भी मिला, उन्होंने फिजिक्स में पहला और मैथ्स में दूसरा स्थान हासिल किया।
अविश्वसनीय, और यही उनकी मुलाकात हुई पियरे क्यूरी से, ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था।
हाँ बहुत बड़ा, पियरे क्यूरी वो पहले से स्थापित वैज्ञानिक थे लेकिन थोड़े हटके थे, अपरंपरागत, और उनकी मुलाकात वो सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है।
नहीं, वो एक बौद्धिक साझेदारी थी, है ना?
एकदम, दो दिमागों का मिलन। पियरे ने मैरी की प्रतिभा को फौरन पहचान लिया, उसे सराहा, और सोचिए उस वक्त जब महिलाओं को साइंस में कोई गंभीरता से लेता नहीं था, पियरे का समर्थन बहुत मायने रखता होगा।
बहुत, ये एक सच्ची साझेदारी थी, इमोशनल भी और इंटेलेक्चुअल भी। फिर उन्होंने शादी कर ली और दोनों का एक ही सपना था, विज्ञान।
कम पैसे थे लेकिन इरादे बहुत ऊंचे थे।
जी,
और मैरी ने अपनी डॉक्टरेट थीसिस के लिए टॉपिक चुना यूरेनियम किरणों पर शोध, और यहीं से उनकी वो
क्रांतिकारी सोच सामने आई। कौन सी सोच?
ये विचार कि रेडियोधर्मिता जो है वो अणुओं के जुड़ने टूटने से नहीं होती, वो परमाणु के अंदर का गुण है, एक एटॉमिक प्रॉपर्टी।
अच्छा, ये तो उस समय के लिए बहुत बड़ी बात रही होगी, क्योंकि तब तो परमाणु को अविभाज्य माना जाता था।
बिल्कुल, ये तो मतलब भौतिकी की पूरी समझ को बदलने वाला विचार था, सदियों की धारणा को चुनौती।
और इसे साबित करने के लिए उन्होंने वो एक खास उपकरण इस्तेमाल किया।
हाँ, इलेक्ट्रोमीटर।
अच्छा।
जिसे पियरे और उनके भाई जैक्स ने बनाया था। ये बहुत हल्की इलेक्ट्रिक करंट को माप सकता था। रेडियोधर्मिता मापने के लिए ये जरूरी था। इसी से उन्होंने वो सटीक मेजरमेंट टेक्निक्स डेवलप की।
और फिर शुरू हुआ वो महान काम, पोलोनियम और रेडियम की खोज।
हाँ, पोलोनियम, जिसका नाम उन्होंने अपने देश पोलैंड के नाम पर रखा, और फिर रेडियम, इसके लिए तो उन्होंने सालों तक टनों पिच ब्लेंड अयस्क को साफ किया,
वो भी एक पुराने से शेड में।
जी हाँ, जिसे किसी ने दुखद पुराना शेड कहा था। टप टप पानी टपकता रहता था, और वो काम मतलब अविश्वसनीय शारीरिक मेहनत, कल्पना करना भी मुश्किल है आज।
इस मेहनत का फल मिला 1903 में, पहला नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में, हेनरी बेकरेल और पियरे के साथ।
जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुरू में जो नॉमिनेशन गया था उसमें मैरी का नाम ही नहीं था।
क्या, ऐसा क्यों?
वही, उस समय का पूर्वाग्रह। लेकिन पियरे ने जोर दिया कि मैरी को भी शामिल किया जाए। ये उनके आपसी सम्मान और पियरे के खुले विचारों को दिखाता है।
लेकिन प्रसिद्धि भी आसान नहीं होती है ना?
बिल्कुल नहीं। मीडिया का ध्यान, लोगों की उत्सुकता, ये सब उनके काम में बाधा डालने लगा, और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ लगातार काम करने का असर उनकी सेहत पे पड़ने लगा था।
हाँ, उस वक्त रेडिएशन के खतरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
नहीं थी। और इसी बीच उनकी बेटियां भी हुईं, आइरीन और ईव।
और फिर 1906 में वो भयानक दुर्घटना, पियरे की मौत।
हाँ, पेरिस की सड़क पर एक घोड़ा गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया अचानक। ये मैरी के लिए मतलब उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उनकी डायरी में लिखा है, पियरे अपनी आखिरी नींद सो रहा है।
पति भी और वैज्ञानिक साथी भी दोनों एक साथ चले गए। कैसे संभाला होगा उन्होंने खुद को,
ये सोचना भी मुश्किल है। लेकिन उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति बनाया, तय किया कि पियरे का काम अधूरा नहीं रहेगा, उनकी विरासत को आगे बढ़ाना है।
और उन्होंने वो कर दिखाया। सोरबोन में पियरे की जगह प्रोफेसर बने।
जी, उस यूनिवर्सिटी के 650 साल के इतिहास में पहली महिला प्रोफेसर। ये बहुत बड़ा कदम था। ये दिखाता है कि वो अब अकेले खड़ी थी, एक स्वतंत्र वैज्ञानिक शक्ति के रूप में।
उन्होंने अकेले ही शोध जारी रखा रेडियम पर।
हाँ, और आखिरकार शुद्ध रेडियम को अलग करने में कामयाब हुई। ये एक और बड़ी वैज्ञानिक जीत थी,
और इसी के लिए मिला उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार 1911 में केमिस्ट्री में।
जी हाँ, दो अलग अलग विज्ञानों में नोबेल, आज तक कोई और ये नहीं कर पाया है।
लेकिन ये दौर भी अजीब था, एक तरफ इतना बड़ा सम्मान और दूसरी तरफ वो स्कैंडल।
हाँ, पॉल लैंगविन वाला मामला। वो भी एक भौतिक विज्ञानी थे, शादीशुदा थे, उनके साथ मैरी के रिश्ते की बात बाहर आ गई, और फ्रांसीसी प्रेस, उसने तो जैसे हमला ही कर दिया।
क्या कहा गया?
उन्हें विदेशी कहा, घर तोड़ने वाली, यहाँ तक कि यहूदी विरोधी बातें भी लिखीं, जबकि वो कैथोलिक थीं। मतलब जबरदस्त लिंग भेद और विदेशी होने का ताना, सब कुछ।
सोचकर ही अजीब लगता है, एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सम्मान मिलने वाला है, दूसरी तरफ इतना अपमान।
हाँ, स्वीडिश एकेडमी ने भी इशारों में कहा कि शायद उन्हें स्टॉकहोम नहीं आना चाहिए पुरस्कार लेने।
लेकिन वो गई।
वो गई, दबाव में नहीं झुकी, पुरस्कार लिया, और अपने भाषण में खास तौर पर जोर दिया कि ये उनका काम है, उनका योगदान है, ये उनके चरित्र की दृढ़ता दिखाता है। उन्होंने साबित किया कि वो किसी की परछाई नहीं है।
फिर पहला विश्व युद्ध आया, उसमें भी उन्होंने एक अलग भूमिका निभाई।
जी हाँ, उन्होंने मोबाइल एक्सरे यूनिट्स बनाई, पेटाइट्स क्यूरीज यानी छोटी क्यूरीज, और उन्हें लेकर खुद अपनी बेटी आइरीन के साथ फ्रंट पर गईं, घायल सैनिकों के इलाज के लिए।
ये तो विज्ञान का सीधा मानवियों उपयोग था।
बिल्कुल। युद्ध के बाद उन्होंने पेरिस में और अपने होम टाउन वारसो में रेडियम इंस्टीट्यूट की स्थापना की,
जो आज भी क्यूरी इंस्टीट्यूट के नाम से मशहूर है।
जी हाँ, और ये आज भी कैंसर रिसर्च और रेडियोधर्मिता के अध्ययन में दुनिया के सबसे प्रमुख केंद्रों में से है। ये उनकी दूरदृष्टि थी।
वो अगली पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा बनी, खासकर महिलाओं के लिए। अपनी बेटी आइरीन को भी तैयार किया।
हाँ, और आइरीन ने भी आगे चलकर अपने पति के साथ नोबेल पुरस्कार जीता। तो एक तरह से वो एक वैज्ञानिक माँ बन गईं, जिन्होंने अपनी विरासत आगे बढ़ाई।
लेकिन जिस चीज ने उन्हें अमर बनाया, वही धीरे धीरे।
हाँ, वही रेडिएशन दशकों तक उसके संपर्क में रहने से उनकी सेहत लगातार गिरती गई और 1934 में सिर्फ 66 साल की उम्र में एप्लास्टिक एनीमिया से उनकी मृत्यु हो गई,
जो शायद उसी रेडिएशन का नतीजा था
लगभग निश्चित रूप से। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गई जो आज भी हमें रास्ता दिखा रही है।
उनकी जिंदगी सिर्फ घटनाओं का जोड़ नहीं था, उनके कुछ गहरे सिद्धांत थे, कुछ वैल्यूज थीं जो उन्हें चलाती थीं। किताब में इसका जिक्र है, जैसे उनकी वो अटूट लगन।
हाँ, वो पिचप्लेंट वाला काम सालों तक ये दिखाता है क्यों वो मानती थी कि सच की खोज के लिए कोई भी कीमत कम है। और उनमें गजब का आत्मविश्वास था। उनका वो कहना कि हमें खुद पर यकीन होना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए खास बने हैं और उसे हासिल करना है,
ये लाइन तो बहुत प्रेरित करती है।
और विज्ञान को लेकर उनकी सोच कितनी आदर्शवादी थी। रेडियम को पेटेंट नहीं कराया,
नहीं
कहा कि ये किसी एक का नहीं है, सबका है। ज्ञान मुनाफे के लिए नहीं, मानवता के लिए है।
क्या आज ऐसा संभव है? खैर,
और उनका वो मानना कि ज्ञान डर को भगाता है।
हाँ,
किसी चीज से डरो मत, उसे समझो। अब ज्यादा समझने का वक्त है ताकि डर कम लगे। आज के दौर में ये कितना सच लगता है ना?
बिल्कुल।
और वो विज्ञान में सिर्फ लॉजिक नहीं, सुंदरता भी देखती थी। कहती थी कि वैज्ञानिक लैब में सिर्फ टेक्नीशियन नहीं होता,
वो एक बच्चे की तरह होता है प्रकृति के रहस्यों के सामने, जो किसी परिकथा जैसे लगते हैं। कितनी खूबसूरत सोच है।
और दुनियादारी से, भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं था, पैसा, शोहरत, आराम। हाँ, जब वो अमेरिका गई और किसी ने कहा कि राष्ट्रपति से मिलने के लिए नई ड्रेस ले लीजिए, तो उन्होंने कहा, मेरे पास वही एक ड्रेस है जो मैं रोज पहनती हूँ। गजब की सादगी।
और आलोचनाओं से कैसे निपटती थी, उनका वो फॉर्मूला, लोगों पर कम, विचारों पर ज्यादा ध्यान दो।
बिल्कुल, फोकस बनाए रखना। और उनकी सोच हमेशा ग्लोबल रही, विज्ञान को देशों की सीमाओं से परे माना।
उनके इतने लंबे और भरे पूरे जीवन में कुछ पल तो ऐसे रहे होंगे जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। अगर तीन सबसे अहम टर्निंग पॉइंट्स चुनने हों तो कौन से होंगे? पहला शायद पियरे से मिलना।
हाँ, मुझे भी यही लगता है, क्योंकि ये सिर्फ शादी नहीं थी, इसने मैरी को एक अकेली संघर्ष कर रही छात्रा से एक सम्मानित वैज्ञानिक साथी बना दिया।
सही। और पियरे का साथ उस पुरुष प्रधान माहौल में,
वो एक ढाल जैसा था, एक बौद्धिक और भावनात्मक सहारा। उसी साझेदारी से वो बड़ी खोजें शुरू हुई।
ठीक है, और दूसरा मोड़, जाहिर है पियरे की मृत्यु।
हाँ, वो व्यक्तिगत रूप से तो एक तबाही थी, लेकिन उसी घटना ने उन्हें अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाने पर मजबूर किया। वो प्रोफेसर बनी, अकेले शोध जारी रखा, वो पियरे की छाया से निकलकर पूरी तरह मैरी क्यूरी बनी।
ये बात है। और तीसरा क्या, उस स्कैंडल और दूसरा नोबल वाला समय?
मेरे ख्याल से हाँ, क्योंकि वहां उनका निजी और प्रोफेशनल जीवन सबसे ज्यादा टकराया। एक तरफ विज्ञान का शिखर, दूसरी तरफ समाज का कीचड़।
और उस सब के बावजूद वो पुरस्कार लेने गईं।
हाँ, ये उनके लचीलेपन, अपने काम पर उनके विश्वास और हिम्मत को दिखाता है। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि वो आलोचनाओं से दबने वाली नहीं है। उन्होंने अपना हक जताया।
मेरी क्यूरी की जिंदगी से आज हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ी सीख तो शायद मुश्किलों में टिके रहने की है। क्या क्या नहीं झेला उन्होंने?
सही कहा, गरीबी, लिंग भेद, विदेशी होने का ताना, पति की मौत, बदनामी, बीमारी, सब कुछ। उनकी कहानी यह दिखाती है कि अगर आपके पास एक मजबूत मकसद हो, जुनून हो, तो आप अविश्वसनीय बाधाएं पार कर सकते हैं।
ये आज भी उन सबके लिए प्रेरणा है जो किसी भी तरह के भेदभाव या मुश्किल का सामना करते हैं।
बिल्कुल, कि कैसे अपनी काबिलियत, अपनी लगन और आत्मविश्वास से आप मुश्किल माहौल में भी रास्ता बना सकते हैं, वो एक मिसाल है।
और उद्देश्य की ताकत, विज्ञान के लिए उनका जुनून इतना गहरा था कि उन्हें उन हालात से भी निकाल लाया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
हाँ, ये याद दिलाता है कि ऐसा काम खोजना कितना जरूरी है जो हमें अंदर से आवाज दे। और जिस तरह उन्होंने पियरे की मौत के बाद अपने दुख को काम में बदला,
वो भी सीखने लायक है, दुख को एक रचनात्मक शक्ति बना देना।
जी, लेकिन उनकी कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि खोज की, प्रगति की एक कीमत होती है।
हाँ, व्यक्तिगत कीमत, गरीबी, अकेलापन, सामाजिक बहिष्कार और अंत में सेहत का बलिदान।
बिल्कुल, तरक्की अक्सर किसी न किसी की कुर्बानी मांगती है। और आखिर में उन्होंने कई भूमिकाएं निभाई, वैज्ञानिक, पत्नी, माँ। ये आसान नहीं था, पर यह दिखाता है कि समर्पण हो और साथ देने वाला साथी हो, जैसे पियरे थे, तो ये मुमकिन है।
तो इस पूरी बातचीत के बाद अगर तीन सबसे जरूरी बातें निकालनी हो मेरी क्यूरी से, एक इमोशनल, एक इंटेलेक्चुअल और एक यूनिवर्सल, तो वो क्या होंगे?
भावनात्मक स्तर पर मुझे लगता है उनकी कहानी हमें जुनून की मानवीय कीमत दिखाती है। वो प्रसिद्धि, वो खोजें, उनके पीछे का दुख, वो क्रूर पब्लिक जांच और आखिर में अपनी ही खोज के हाथों अपनी जान दे देना, ये बताता है कि महान बनने के लिए कभी कभी कितनी बड़ी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ती है।
ये बहुत गहरा है। और बौद्धिक स्तर पर?
बौद्धिक रूप से सबसे बड़ी बात तो वही थी, रेडियो धर्मिता परमाणु का गुण है। इसने फिजिक्स बदल दी, एटम के अंदर की दुनिया का दरवाजा खोला। और दूसरा, उनका काम करने का तरीका, एकदम सटीक माप, व्यवस्थित प्रयोग, उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया।
सही। और वो एक यूनिवर्सल सबक जो हम सब अपना सकते हैं,
वो है उनकी अटूट लगन, उनका जबरदस्त आत्मविश्वास। वो जो कहती थी, हमें यकीन होना चाहिए कि हम किसी चीज के लिए बने हैं, और एक साफ मकसद की ताकत। ये गुण इंसान को किसी भी मुश्किल, किसी भी सामाजिक बाधा से पार ले जा सकते हैं। अगर इरादा पक्का हो तो रास्ता निकल ही आता है।
वाकई, मैरी क्यूरी की कहानी सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं है, ये इंसान के जज्बे की, इरादे की और एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की कहानी है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपने जुनून के लिए क्या हद तक जा सकते हैं। अब एक आखिरी विचार श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।
मैरी क्यूरी ने ज्ञान को, रेडियम जैसी खोज को सबकी संपत्ति माना, उसे पेटेंट नहीं कराया। आज की दुनिया में जहां साइंस और पैसा इतने जुड़े हुए हैं, जहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इतने अहम हैं, क्या उनका ये आदर्शवाद आज भी प्रासंगिक है, या ये सिर्फ एक गुजरे जमाने की रोमांटिक सोच है? इस पर जरूर सोचिएगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।